समर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले दो दिनों में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक किया अपने नाम। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय संगठन संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें सोमवार को 25 और मंगलवार को 5 और लोग मारे गए। पीओजेके पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की लहर से घिरा हुआ है। पाकिस्तान संबंधी मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश दास ने पाकिस्तान के कार्य करने के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने न सिर्फ एक आम नागरिक संगठन को आतंकवादी घोषणा कर दिया, बल्कि उसके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रही है, और वो भी चुनाव प्रक्रिया के बीचों बीच। बहुत ही निंदनीय है पाकिस्तान का ये कायरता। इसीलिए जैक ने ये कह दिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा और न ही पाकिस्तान से कोई बातचीत करेगा।
इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। साथ ही उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह भी किया है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और तैयार हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में हालिया हमले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के कुछ घंटों बाद हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी वार्ता समाप्त कर ली है और ये बातचीत सकारात्मक रही। ईरान के खिलाफ संयुक्त युद्ध शुरू करने के बाद नेतन्याहू और ट्रंप की ये पहली मुलाकात थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने चेतावनी दी है कि अफ्रीका भर में लाखों लोगों को आपराधिक गिरोहों द्वारा तस्करी करके ऑनलाइन धोखाधड़ी के धंधों में धकेल दिया गया है, जिससे सालाना अरबों डॉलर का अवैध मुनाफा कमाया जाता है। संगठन ने कहा कि मानव तस्करी के गिरोह नौकरी चाहने वालों को तेजी से निशाना बना रहे हैं और पीड़ितों को अवैध गतिविधियों में धकेल रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि केन्या, इथियोपिया और पड़ोसी देशों के नागरिकों को एशिया में चल रहे धोखाधड़ी के गिरोहों में तस्करी करके लाया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 863.1 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार ने कल संसद में बताया कि वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी और देश के मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत बाजार पहुंच बढ़ने के कारण हुई है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात 441.8 अरब डॉलर रहा, जबकि सेवाओं का निर्यात 421.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो देश की निर्यात वृद्धि में दोनों क्षेत्रों की संयुक्त शक्ति को दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि भारत के हाल के व्यापार समझौते के कारण विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और EFTA देशों के साथ निर्यात के अवसरों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। साथ ही इसने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और श्रम प्रधान को सशक्त बनाने में सहायता की है। मंत्रालय ने उद्गम प्रमाण पत्रों के बढ़ते उपयोग और व्यापक उत्पाद कवरेज के माध्यम से भारत के हाल ही में लागू किए गए व्यापार समझौते के बढ़ते उपयोग का भी उल्लेख किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 311,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान किया है। BIMCO ICS Seafarer Workforce रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री सोनोवाल को मौजूदा सुरक्षा स्थिति, समुद्री घटनाक्रम और आपात स्थिति में भारतीय नाविकों की मदद के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासियों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 27:49.78 में ये दौड़ पूरी की। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। 29 वर्षीय हरजिंदर कौर ने 227 किलोग्राम के कुल भार को उठाकर ग्लासगो में 8 भारोत्तोलक स्पर्धाओं में भारत का 7वां पदक हासिल किया। अब भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने श्रीलंका के साथ आगामी 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के लिए कल 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये श्रृंखला 15 अगस्त से शुरू होगी। शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि KL राहुल उप कप्तान होंगे। साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता BCCI के उत्कृष्टता केंद्र की ओर से फिटनेस की स्वीकृति दिए जाने पर निर्भर करेगी, जबकि वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। दाएं हाथ के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी वापसी की है। श्रृंखला का पहला मैच 15 अगस्त से गाले में शुरू होगा। इसके बाद दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह और भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर हरजिंदर कौर को बधाई दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठकें की। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और क्रिकेट में BCCI ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाले 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।